मैं कभी कभी सोचा करती होती हूँ कि एक खास उम्र में लड़कों को बड़ा चाव होता है, शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा एक साल के बाद ही। अल्लाह मियाँ हमेशा हमेशा इन बच्चों को सुखी रखे, खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। फिर आदमी लतीफे सुनाना शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए चंद एक स्पॉन्सर।
पेंटर्स ऑफ GTA फॉर योर होम पेंट और ऑफिस पेंट, इंटीरियर और एक्सटीरियर। पॉपकॉर्न सीलिंग को रिमूव करना, वाटर डैमेज, इफ देयर आर येलो स्पॉट्स इन सीलिंग, कॉल पेंटर्स ऑफ GTA। वाटर डैमेज में अगर येलो स्पॉट्स आपकी सीलिंग पे, उनको रिमूव करके बेदाग करेंगे। टेक्सचर स्टाइल पेंटिंग विच इज द लेटेस्ट इटालियन स्टाइल पेंटिंग, या वॉल पेपर लगवाना चाहते हैं तो कॉल कीजिए टेक्सचर स्टाइल पेंटिंग के लिए पेंटर्स ऑफ GTA 6472711974 मोहम्मद सलीम 6472711974।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
सोचो ना बस, बिल्कुल भी होने मिलाओ फोन। 416-502-8000। स्ट्रेस चाहे लाखदा हो या काकदा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000। लाइसेंस नंबर 10845। इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
कल्पना करो कि तुसी अपने रिकॉर्ड तो इन्ने शर्मिंदा हो कि तुसी इस बारे गल भी नहीं करते, सगों तुसी ध्यान भटकाउंदे हो कि उम्मीद करदे हो कि कैनेडियन भुल जान कि तुसी करां दीआं कीमतां नूं दुगणा कीता, टैक्स वधाए ने, अपराध नूं वधन दित्ता। एक दहाके बाद कार्नी ट्रूडो लिबरल्स ने कैनेडा नूं कमजोर बना दिता। ट्रंप दीआं धमकियां वध रहीआं ने। कैनेडियंस नूं मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। कंजरवेटिव नूं वोट देना ही साडी आर्थिकता नूं दोबारा खड़ा करन, घर खरीदन अते कम्युनिटीज नूं सुरक्षित बनाउण दा इक्को इक तरीका है। बदलाव लई कंजरवेटिव नूं वोट दिओ। ऑथराइज बाय द कंजरवेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा।
ब्रैमली अते ड्यू साइड विखे घातक गोलीबारी। हम्बरवेस अते एयरपोर्ट रोड दे नेड़े घर ते हमला। ब्रैमटन कार जैकिंग विच एक औरत नूं कुट्टिया गया। इस सारे अपराध उन्हां हिंसक अपराधियों नाल जुड़े हुए ने जो कार्नी ट्रूडो दीआं नरम अपराध नीतियां द्वारा मुक्त हुए ने। पर उम्मीद दी किरण है हिंसक अपराधियों नूं जेल भेजन ते सुरक्षित कम्युनिटीज नूं बहाल करन दे कॉमन सेंस कंजरवेटिव प्लान दा समर्थन करन लई हजारां ब्रैमटन वासी पीयर पॉलियव दी रैली विच शामिल होए। अपने परिवार दी सुरक्षा दी परवाह करदे हो, कंजरवेटिव नूं वोट पाओ। एडवांस पोलिंग 18 से 21 अप्रैल तक सवेरे 9 to 9:00 PM तक। कैनेडा दी कंजरवेटिव पार्टी द्वारा अधिकारित।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
वही बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
मजे मजे के टिक्के, मजे के कबाब,
खाना हो तो आजा।
ਖਾਓ ਸ਼ਾਹੀਨ ਟਿੱਕਾ ਔਰ ਕਬਾਬ
ਔਰ ਯੋਰ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸ਼ਾਹੀਨ ਟਿੱਕਾ ਔਰ ਕਬਾਬ
ਮੁਝੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦਾਲ ਤੜਕਾ
ਲਾਹੌਰੀ ਸਟਾਈਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੜਾਈ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਬਾਬ ਐਂਡ ਸਿਜ਼ਲਿੰਗ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਆਈਟਮ
ਸ਼ਾਹੀਨ ਟਿੱਕਾ ਔਰ ਕਬਾਬ
ਇਨ ਫਲੈਮਿੰਗਟਨ ਮਾਲ
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए
10 जगह क्यों एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स
फातिमा ग्रोसर्स
जी हाँ फातिमा ग्रोसर्स मसाले ताज़ा सब्जियाँ फल हलाल गोश्त मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ो आवाज़ के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000 फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त
फेडरल इलेक्शन सोमवार 28 अप्रैल नु हो रही है यकीनी बनाओ कि तुसी वोट पाउन लई रजिस्टर्ड हो जे तुसी रजिस्टर होए हो तां तुहानू डाक विच एक वोटर जानकारी कार्ड मिलना चाहिदा है ए तुहानू दसदा है कि तुसी किथे अते कदों वोट पा सकदे हो जे ए तुहानू 11 अप्रैल तक प्राप्त नहीं हुंदा है जां इससे दित्ती जानकारी गलत है तां elections.ca ते जाओ ए साडी वोट है वोटिंग बारे लोड़ींदी अधिकारित जानकारी वास्ते elections.ca ते जाओ जां 1-800-463-6868 ते कॉल करो
अपने प्यारों को पैसे भेजें लैंडफाई के जरिए पैसे पहुंचे मिनटों में वो भी आसान और महफूज तरीके से गुड एक्सचेंज रेट के साथ $150 भेजने पर $0 फीस इसके अलावा अगर आप $100 से ज्यादा भेजें तो साइन अप करते वक्त रेफरल कोड E10 इस्तेमाल करें और अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर 10% कैश बैक हासिल करें यानी $500 भेजने पर $50 कैश बैक की सूरत में आपके अकाउंट में वापस लैंडफाई की 10% कैश बैक ऑफर के लिए आज ही लैंडफाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें विजिट lamfy.com फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस वेलकम बैक तमाम स्वामी जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और गर्मा गर्म खबरें लेकर जनाब सुबह से कोई कह रही गुड न्यूज नहीं है तो गुड न्यूज लेकर अब आपके लिए गुड न्यूज लेकर जो है वो शाजिया मलिक साहब आ गई है शायद हो मुझे नहीं पता अभी खबरों की लिस्ट मैंने उनकी देखी नहीं है उनके सामने लिस्ट वो जो इनकी तैयारी होती है चीट नोट्स वो इन्होंने अच्छा इनके चीट नोट्स जो मगर आप पढ़ नहीं सकते वो अंग्रेजी में बोलती उर्दू में AI फिट हुआ है इनके अंदर आप डाले ऐसे अंग्रेजी बाहर आता है उर्दू है ना टैलेंट तो है मानना पड़ेगा इस बात पे ना तो गर्मा गर्म खबरें लेकर हमारे साथ स्टूडियो में आ गई हैं और आप हमारे साथ तकरीबन 8 बजे तक ऐसे ही जुड़े रहिएगा जो लोग डायल पर हमें सुन रहे हैं तो अगर कहीं आपको सुनने में तकलीफ हो रही है मतलब बहुत सी तकलीफ हो सकती है आपकी गाड़ी सही नहीं चल रही है आपकी सीट में कोई प्रॉब्लम है या रेडियो में से आवाज सही नहीं आ रही तो आप एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 और जो लोग घर पे रहें तो ई आवाज टीवी लगा लें ऑफिस में तो आप वेबसाइट लॉगिन कर लें eawaz.com तो आपको ये बिल्कुल ताजा तरीन खबरें आपको कहीं नहीं मिलने वाली मैं शर्त क्या कह रहा हूं अभी से बैट ले लिया जैकपॉट निकलेगा आपको ये खबरें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी सिर्फ 770 और ई आवाज के प्लेटफॉर्म पर ये ताजा तरीन खबरें आपको पेश की जा रही है बस मैं 30 सेकंड रुक जाता हूं उसके बाद इनको करता हूं नहीं अच्छा 30 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो रहा आइए हमको खुश आमदीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसी हैं आप
डब्ल्यू एस अजीज हमवतनों ठीक हो
अल्हम्दुलिल्लाह
ये फिर कंजर्वेटिव बन के आ गया।
नहीं, नहीं मैं वो अभी उतारना भूल गया मुझे, आज तो मेरे को न्यूट्रल कलर बन के आया था।
अच्छा 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 अच्छा
आपने अच्छा याद किया।
लेकिन कहते हैं लोग न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, कोई तो आपको साइड लेनी चाहिए।
नो कमेंट।
नहीं नहीं कुछ तो बोलिए आप इस पे, टिप्पणी दीजिए।
नहीं बल्कि वो आप कही थी ना, आप अगर आप ये कहती कि यार किसी एक पार्टी की तरफ होना चाहिए, तो वो महीना मेरा गुजर गया।
अच्छा।
सिर्फ एक ही पार्टी को एंजॉय करता था, वो है
इफ्तार पार्टी।
इसके अलावा मैं किसी पार्टी को नहीं जानता।
हम भी खाने वाली पार्टी के साथ।
बाकी अगर आप मुझे कहेंगी कि किस पार्टी की साइड
है, आप देखते हैं मुझे सहसल चड्ढा साहब कितने पसंद है।
बस अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा अच्छा चलो,
तो मुझे लगता है कि आप खबरें सुना दें,
सुनाई
इससे पहले कि लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। वैसे मुझे अभी आपके खबरें आपके पास होंगी, लेकिन कुछ ऐसे ही स्क्रॉल करते करते अभी कुछ देर पहले पता चला कि कहीं ना कहीं चाइना राजी हो रहा है बात करने के लिए। कुछ ऐसी कहानियां,
चाइना तो बिल्कुल नहीं हो
राजी हो रहा है।
नहीं,
चाइना ने कहा, मुझे जब तक मैं खबर बता रहा हूँ, शायद हो सकता है अभी आ जाए, चाइना कह रहा है कि भाई आपका जो ये एक मैडनेस है ट्रम्प साहब की, उसका नुकसान दोनों को होगा। जो
ये तो हम कल खबर सुना चुके हैं, ये हम सुना चुके हैं, ये कल शी साहब ने वियतनाम में बोल दिया है, परसों बल्कि सुनाई थी ये खबर। अच्छा बोलिए आगे फरमाइए। हम बतनो नहीं नहीं हम बतनो सुनाओ सुनाओ बासी खबरें सुनाओ सुनाओ।
ठीक है, आज जो उन्होंने कुछ 200 कितना लग गया, 45% लग गया, उस पर चाइना की तरफ से बात आ रही है, वहां की कई मीडिया भी इसको इंशाल्लाह बस कुछ देर में रिपोर्ट करेंगे। मैंने भी
मीडिया तो कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई कुछ बात कर नहीं सकता।
नहीं, बात ये हो रही है कि चाइना कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं आपके साथ।
उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि बात करने को तैयार है, उन्होंने कहा तुम हमसे अगर दुखी हो तो बात कर लो, लेकिन ये टैरिफ्स मत लगाओ।
उन्होंने
ये कहा मलेशिया के अंदर ही उनका बयान है।
ज्यादा उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि अगर आप रिस्पेक्टफुली एंड इक्वल उस पर अगर राजी होते हैं बात करने के लिए, तो हम भी राजी हैं इस लेवल पर बात करने के लिए।
नहीं नहीं, ये हमको वर्ड्स बहुत जो है ना केयरफुली चूज करने पड़ेंगे। ये उन्होंने कहा है कि अगर आप रिस्पेक्टिवली हमसे बात करना चाहते हैं तो हम भी आपसे बात करेंगे, डजंट मीन कि हम आपसे टैरिफ हटा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला।
मैंने भी नहीं कहा कि टैरिफ हटा रहे
हैं। हाँ हाँ, तो राजी का वर्ड इसमें नहीं आ सकता।
नहीं, राजी बातचीत करने में हो गए।
हाँ नहीं, राजी बातचीत नहीं है, उन्होंने कहा हमसे बात करो। उन्होंने
तो राजी होंगे तो बात करेंगे ना।
नहीं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, कि तुम अगर ऐसे टैरिफ लगाते रहोगे वो रिटेलिएटरी, हम भी लगाते रहेंगे। तो उसने उसके ऊपर कहा है कि अगर आपको हमसे कुछ प्रॉब्लम है तो बात करो।
हाँ, और इक्वल लेवल पर,
इक्वल लेवल पे रिस्पेक्टिवली।
तो रजामंदी जाहिर की ना।
नहीं, रजामंदी तो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि जी आप ये टैरिफ मत लगाओ।
नहीं नहीं, टैरिफ नहीं, बात देखें, वो पहले कह रहे थे कि टैरिफ ना लगाओ। अब जो रजामंदी हो रही है वो भी इक्वल बेसिस पर और रिस्पेक्टफुली, वो कह रहे हैं भाई ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, हमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको बैठ के मतलब
हमको प्रॉब्लम आ रहा है,
आ रही है उनको भी।
नहीं नहीं
आ रही है उनको,
उन्होंने ये नहीं,
पूरी दुनिया को प्रॉब्लम आ रही है।
हाँ, पूरी दुनिया को,
और चाइना को भी आ रही है।
हाँ
चाइना को भी आ रही है,
आएगी, लेकिन उसका वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने अपना एक नया एम्बेसडर भी लगाया डब्ल्यूटीओ में
जी। तो हाँ, वो मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प साहब इसको वेलकम करते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि कोर्ट बॉल उनकी तरफ थी, अब उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा टच करके वापस ट्रम्प साहब की तरफ भेजी है कि भजन अगर,
लेकिन वो झुकने झुकने की बात नहीं उन्होंने की कि हम झुक,
या ईगो का मसला आ गया ना शायद, प्रॉब्लम है दोनों के बीच में ईगो का मसला आ गया। और मुझे लगता है कि
चाइनीज में तो ईगो का है ही नहीं मसला, चाइनीज ने तो ये ड्रामा शुरू
नहीं, ईगो नहीं है, नहीं ईगो ही हो गया ना। देखिए होता क्या है, ईगो क्या होता है,
लेकिन टैरिफ तो उन्होंने लगाया, इन्होंने तो खाली जवाब दिया, ये तो बिल्कुल कनाडा वाला केस है,
ये भी
या बाकी दुनिया का केस है।
मुझे बताएं, अगर ये टैरिफ लग गया, फर्ज करें आप ऐसे हम सिनेरियो ले लेते हैं, वैसे तो पॉलिटिकल्स में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, कि फर्ज करें ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया 100%, तो यहीं से आपने 125 या 130 का टैरिफ लगाने से उसी वक्त बेहतर ये था, जो मुझे ट्रम्प साहब की साइंस समझ आ रही है, कि भाजन एक सफीर या कोई भी सेक्रेटरी लेवल पर आप जो है वो बंदा नीचे से भेजते, ऊपर बयान ना देते लीडर टू लीडर कि भाजन ये जो आपने 100% लगा दिया है, मतलब कुछ सोच समझ के लगाया, क्यों लगा दिया, कोई मसले मसाइल हैं तो लेट्स टॉक। लेकिन कनाडा ने भी यही गलती की और चाइना ने भी यही गलती की।
सिर्फ चाइना और कनाडा नहीं, सारी दुनिया ने,
हम तो अभी
यूरोपियन यूनियन सारी यूरोपियन यूनियन ने,
चलिए यूरोपियन यूनियन को भी डाल लें तो रेस्ट ऑफ दुनिया कर लें। उन्होंने गलती ये की कि जब लगा था तो उस पर कहीं ना कहीं सफारती लेवल पर या बैकडोर पर मैसेज देना चाहिए था, सामने आके लीडर यानी टॉप लीडरशिप को नहीं करना चाहिए था, उस बंदे के सामने जो कि तैयार है आपके ऊपर, आप कहते हैं ना कि आप पत्थर मारोगे तो ईंट मार देगा, आप ईंट मारोगे वो हथौड़ी ले आएगा, आप हथौड़ी मारोगे तो वो बड़ी हथौड़ी ले आएगा।
हाँ, लेकिन उसके ऊपर जो उनके अपने कॉमर्स सेक्रेटरी के जो जो उसके मिनिस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने खुद ही कहा है ना कि अगर हम जैसे कि 154 कंट्रीज अब हमको बोल रहे हैं कि हम आपसे बात करने को, तो इसमें भी महीनों लग जाएंगे ट्रेड डिस्कशन में। हाँ, तो
लेकिन ये टैरिफ तो नहीं लगेगा ना।
हाँ,
अगर हम बातचीत शुरू कर देते पहले।
लेकिन 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 काउंटर टैरिफ तो हर आदमी जब तक नहीं लगाएगा ना तो वो टेबल पे बैठ के टॉक क्या फिर करेगा, किस बात पे टॉक करेगा?
नहीं नहीं,
क्या है उसके पास, उसके पास फिर बात करने के लिए मुद्दा क्या है?
इस वक्त ट्रम्प साहब ने सबको 90 डेज के लिए पॉज कर दिया तकरीबन सबके लिए, सिवाय चाइना के। तो ये
लेकिन क्लियर मैसेज के ऊपर, लेकिन जो ये इस दफा के लिए, लेकिन जो इससे पहले
वो लगे
लगाए थे
वो लगे हुए इस दफा वाले की बात,
इस दफा वाले की बात
कि उन्होंने 90 डेज में पॉज लगा दिया पूरी सब तकरीबन सबके लिए एक्सेप्ट चाइना। तो अब नजर क्या आता है कि
अब ये भी तो ज्यादा
नहीं, अब नजर ये आ रहा है कि प्रॉब्लम 1-to-1 है और प्रॉब्लम कहीं कुछ और है जो कि अभी सामने खुलकर दोनों तरफ से नहीं आ रही, क्योंकि ट्रम्प साहब को ही मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग इतनी जल्दी नहीं बन सकती, और शी साहब को भी मालूम है कि हमारा एक बहुत बड़ी मार्केट अमरीका है। आज अगर वो ताइवान जा रहे हैं, मलेशिया से बात कर रहे हैं या कहीं और यूरोपीय यूनियन की तरफ जा रहे हैं,
ताइवान नहीं गया,
वो ताइवान कह रहा हूँ, वियतनाम, माजरत रिवाइंड कर लें, वियतनाम गए, मलेशिया से बात करने की वो कर रहे हैं, इसे भी कोई 5 से 10 साल 15 साल 20 साल लग जाएंगे चीजों को स्टार्ट करने में, 10 साल तो लग जाएंगे।
अच्छा, ये
उस लेवल पर लाने के लिए जहां आज अमरीका के साथ।
चलो, ये मैं आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देती हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर सारी दुनिया की लड़ाई है ना अमरीका के साथ, तो फिर वो सारी चीजें जो हैं वो उसको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए, वो सारी उनकी चीजें रिप्लेस कर लेगा।
देखिए, टाइम लग जाएगा, यूरोपियन
यूनियन
लग जाएगा,
टाइम उनके लिए।
और फिर दूसरा आपको मालूम है, वियतनाम की हद तक तो सही है, जो मलेशिया है आपको मालूम है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस है, दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका।
आज हम आपकी ये भी गलतफहमी दूर,
आप देख लीजिएगा, अभी तो इब्तदाइश
है, अभी अभी जो अंडर इन्फ्लुएंस अनवर है ना, वो अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस नहीं है। वो अब चाइना के साथ अलाइन कर रहे हैं,
चाइना
के साथ कर रहे हैं, ये शिफ्ट आ रहे हैं। जैसे कि बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना थी वो अलाइन करते थे इंडिया के साथ, अभी कि जो गवर्नमेंट है, अभी कल क्या हो जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी का जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस का, वो पाकिस्तान के साथ अलाइन कर रहा है। ठीक है, पहली दफा इन ईयर्स उन्होंने जिन्ना साहब की जो है वो एनिवर्सरी मनाई है, उन्होंने कहा है कि जिन्ना साहब हमारे भी लीडर थे आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ये तो बोलने को ही वो हो गए थे कि बोलते ही नहीं थे कि जिन्ना साहब हमारे भी लीडर थे। उसके बाद उन्होंने ये कहा ही नहीं था कि हम पाकिस्तान के साथ कभी अच्छे तालुकात थे, वो तो कहती रहती थी मेरे बाप को मारा है मारा है मारा है,
वो
तो
दुश्मन
है, ये दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन, हाँ एनिमी कंट्री था अभी तो,
फ्रेंड्स टू इंडिया,
हाँ हाँ फ्रेंड्स टू इंडिया थे, अभी फ्रेंड्स टू इंडिया नहीं है, अभी फ्रेंड्स टू पाकिस्तान है। राइट,
ठीक है, टाइम की बात होती है,
तो टाइम की बात है। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर अनवर साहब है उसका टिल्ट यूएस की तरफ नहीं है, वो अपने अब सारे मामलात रीसेट कर रहे हैं चाइना के साथ, और यही बाकी सारी दुनिया में भी हो रहा है। जैसे कि आप मिडल ईस्ट में भी देख रहे हैं कि जो सीरिया के साथ सबके तालुकात खराब थे, है ना, लेबनान का खराब था, सऊदी का खराब था, कतर का खराब था, अभी सब लोग सिर्फ ये नहीं है कि उनके साथ जो है वो रीसेट कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम आपको फाइनेंस भी करेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे, है ना।
तो ये
शिफ्ट आते हैं चीजों,
आने वाले वक्त में बेहतर सूरत हाल हो जाए,
बेहतर
ही बन।
एक्सपर्ट्स हैं नहीं हम, तो जो हम हिस्ट्री जो बयान करती है या कि जो हम पढ़ते हैं डिफरेंट जो आती हैं चीजें ओवर द ईयर्स जो हमने पढ़ी, हम तो उसकी बेस पे बात करते हैं। हमने तो कभी ये क्लेम नहीं किया कि जी हम तो बहुत बड़े खलीफे हैं, ये एक्सपर्ट हैं, हम तो और जो कोई हमारे साथ जुड़ना भी चाहेगा तो हम उसको जुड़ेंगे। ठीक है,
खबरें सुनाइए।
हाँ जी, हम आपको अब अपनी खबरें सुनाते हैं, हम जाते हैं जी खबरों की तरफ। अभी देखिए आप, ठीक है, ओके जी। तो दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह जो आपको पता ही, आमिर साहब के दोस्त हैं, तो आमिर साहब के पास आप नाम उनका ले सकते हो, तो आप ऑल स्टेट के साथ है तो आपको बहुत अच्छे रेट्स देंगे ऑटो और होम इंश्योरेंस में। इसके अलावा आपको अगर खाना खाना है तो आप फैसल चिट्ठा साहब के जो दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस सागा में, एक ओकविल में, वहां जाके आप खाना खा सकते हैं। और जो है हमारी डॉक्टर नाजिया रहमान बहुत जबरदस्त दांतों की सुविधाएं देते हैं, और उनके भी जो है दो क्लिनिक्स हैं, एक तो मिसेस सागा में भी है, मिसेस सागा रोड पे है, और दूसरा जो है रिजवे प्लाजा में आ गया, तो आप दोनों जगह पे जाके उनसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए अच्छा सर्विस ट्रक का, तो क्विक ट्रक ल्यूब के पास आप जा सकते हैं, क्यूटीएल आपको बहुत अच्छी सर्विस سروس دیتا ہے, ہر طرح کے آپ کے جو ٹرک کے پرابلمز ہیں ان کو سالو بھی کرے گا, اور بہت اچھے آئلز جینوئن ڈالتے ہیں, کوئی دو نمبر چیز نہیں یوز کرتے ہیں وہ لوگ. اور اگر آپ کو اچھے کپڑے چاہیے ہے اٹالین, صرف وول کے نہیں بلکہ اٹالین کے جو اسپرنگ سمر جو کلیکشن ہے وہ بھی ابھی آپ کو نظر آئے گی اسپیئر اینڈ مکے پہ, تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور ان سے لے سکتے ہیں. اینڈ پائل جیولرز پہ آپ جائیے, اسلم بھائی ہوتے ہیں وہاں پہ, اور آپ کا کوئی بھی گھر کا اوکیزن ہے تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ جی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں جیولری اچھی لینے میں. اور ہمارے جو سلطان بھائی ہیں, اگر آپ کو بنڈل ڈیلز چاہیے ہے اس کا الیکٹرانکس کا, تو آپ ان سے بات کریں. برامٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ ہوتے ہیں, بوویٹ پہ ہیں, 804-801 بوویٹ ڈرائیو ویسٹ پہ ہیں, تو آپ ان سے بات کریں اور اچھی ڈیلز ملیں گے. اچھا جناب, آج کی تو سب سے بڑی جو خبر ہے وہ تو بینک آف کینیڈا کی ہے, اور انہوں نے اپنا بینچ مارک انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم جو ہے وہ ان چینج رکھا ہے. ویسے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کم کر دیں گے, لیکن کم نہیں کیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے اپنا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو رکھا ہے 2.75% پہ. یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہے کہ انہوں نے کی لینڈنگ ریٹ جو ہے ان چینج رکھا ہے آفٹر 7 کنزیکٹو کٹ سنس جون لاسٹ ایئر. اور بینک آف کینیڈا کے جو گورنر ہیں ٹم میکلم, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو یو ایس کی ٹریڈ پالیسی سے شفٹس آ رہے ہیں, بڑا کیوٹک ڈلیوری ہے, بڑی انسرٹنٹی ہے اور فائنینشیل مارکیٹس کے اندر, تو اس کے لیے جو ہے پھر ہم ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ چیزیں چل رہی ہیں, تو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہوئے گا, اور ابھی ٹیرفس آئے گے کہ نہیں آئے گے, ریڈیوس ہوئے گے تو کبھی کیا ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہے. انفلیشن جو ہے وہ انہوں نے کہا جی وہ ہے 1.5% پہ موسٹ آف دا ایئر یہ رہے گی, تھینکس ٹو یہ جو کنزیومر کاربن ٹیکس جو ہے یہ اینڈ ہوا تھا, اور کینیڈا جو ہے وہ اس کا فائدہ, ظاہر ہے کہ جو کینیڈینز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا ہے کہ یہ ایک تو یہاں پہ جو چیزیں ہیں کینیڈا میں وہ بھی بہت انسرٹنٹی کی طرف چل رہی ہیں, خاص طور پہ جو ابھی جیسے کہ ایسٹر لانگ ویکینڈ آنے والا ہے, ٹریول بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں تو پیسے بھی تھوڑے لوگ اپنے بچا رہے ہیں. آج جو کیلیفورنیا کے گورنر ہیں بلکہ گیوین نیوسن, انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں ایک انٹرنیشنل ٹوریزم کیمپین چلانے لگا ہوں, اور خاص طور پہ میں کینیڈینز کو بولتا ہوں کہ اس سمر میں آپ ضرور آؤ یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ آئیکونک ہالی ووڈ سائنس ہے, واک ٹو فیم ہے, بیچز ہے, وائن یارڈز ہے, اور یہ بڑی فیوریٹ اسپاٹ تھی کینیڈینز کی, ہمیشہ آتے تھے. تو ہم آپ کو خالی لاسٹ منتھ کا آنکڑا دے دیں کہ لاسٹ منتھ صرف جو ہے لٹل اوور جو 3 million لوگ تھے وہ کینیڈا یو ایس بارڈر پہ تھے, اور آپ سوچئے کہ اس سے پہلے جو ہے اوور 4 million لوگ جو ہوتے تھے وہ جاتے تھے وہاں پہ امریکہ میں جاتے تھے. لیکن کل ہم نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ کینیڈین جو کالجز ہیں ان کے جو پروفیسرز ہیں ان کو منع کر دیا گیا, جو ایک سرٹن کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ نہ جاؤ. تو یہ بےچارے جو اب جن کو کہ یہ کیلیفورنیا کے گورنر بلا رہے ہیں, اور اگر یہ کراس کرنا چاہیں گے بھی تو اگر وہ یہ وہ سرٹن فریم ورک میں آئیں گے جس کو کہ اب امریکہ نہیں پسند کر رہا ہے, تو پھر یہ بےچارے کیسے امریکہ میں آئیں گے, تو یہ بڑا پرابلم ہے ایسے ہے. گرین پارٹی کے جو کو لیڈر ہیں جاناتھن پیڈنال, انہوں نے آج بڑا اس کے اوپر جو ہے شور مچایا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ڈبیٹ جو آج ہونے والی ہے اس سے پہلے مجھے جو ہے ہٹا دیا ہے کہ میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکتا, اینڈ دس از ان فاؤنڈیڈ اینڈ ان ڈیموکریٹک. یہ جو لیڈرز کا ڈبیٹ کا کمیشن ہے, لیڈرز ڈبیٹ کمیشن, انہوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ آج صبح ہم کو ایک لیٹر بھیجا تھا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ چونکہ تمہارے سارے کینڈیڈیٹس ہر رائڈنگ سے نہیں رن کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نے انیشیلی ہم کو یہ بتایا تھا کہ ہر رائڈنگ سے رن کریں گے تو اس لیے ہم نے آپ کو پرمٹ کیا تھا تو اب نہیں کریں گے. یہ آج بات کر رہے تھے اس میں مونٹریال میں, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے ہمیں اب سنائی دیا گیا ہے کہ ایسا ہم کو اجازت نہیں دیا جا رہا ہے. 7 days بفور دا فائنل جو ہوتی ہے وہ الیکشنز کینیڈا کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کو ان کو دینا پڑتا ہے کینڈیڈیٹس کی, تو ڈبیٹ سے 7 days پہلے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے پوری لسٹ دی تھی, لیکن اب پتا چل رہا ہے نا کہ ان کے صرف 232 کینڈیڈیٹس جو ہے وہ رن کر رہے ہیں, پوری ہر کانسٹیٹیوئنسی سے نہیں رن کر رہے ہیں. اب اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو اجازت دی جاتی ہے نا کہ یہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایٹ لیسٹ ایک سیٹ ضرور ہاؤس آف کامنز میں ہونی چاہیے جو کہ ان کے پاس ہے. پھر نیشنل جو سپورٹ ہے 28 days بفور دا پولز وہ ایٹ لیسٹ 4% ہونا چاہیے. تو ہم تو آپ کو سارے دن سے یہ پولز بتا ہی رہے تھے کہ ان کے پاس اب پولز میں ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ گھٹ کے 3% سے بھی نیچے آ رہی ہے, تو وہ سیکنڈ پوائنٹ بھی نہیں ہے. پھر جو تیسرا پوائنٹ تھا کہ فل لسٹ آپ کو कैंडिडेट्स का देना है कि वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से रन कर रहे हैं तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ तीन में से दो शर्तें इनकी नहीं पूरी हो रही है और एक हो रही है, तो उसकी वजह से शायद इनको हटाया है, तो इसके ऊपर आज इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। अच्छा जनाब, ये अब जो फ्रेंच डिबेट होने वाली है, तो अब 25th डे है आज, जो तीनों लीडर्स जो है डिफरेंट अपने इलेक्शन ट्रेल्स पे है, तो इसमें अब लिबरल्स अभी भी 8 पॉइंट आज तो फिर से आगे चले गए, कुछ दिन पहले पांच पॉइंट्स आगे थे, अभी 8 पॉइंट्स ये आगे चले गए हैं ऑन द इन दिस 36th डे, ये जो फेडरल इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। नैनोज का आज फिर से जो पोल आया है उसमें लिबरल्स जो है उनको सपोर्ट है 45% की, कंजर्वेटिव को 37%, दे आर नाउ डाउन 2 पॉइंट्स, एनडीपी 8%, ब्लॉक के बैकवा 6%, ग्रीन्स 2%, देखिए ना आप ये 2% पे है, और लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 1%। लिबरल्स को जो सपोर्ट सबसे ज्यादा है वो वैसे ही है ऑन्टारियो, अटलांटिक, कैनेडा, क्यूबेक, और अब उनकी सपोर्ट बीसी में भी बढ़ गई है जहां पे कभी कंजर्वेटिव्स का बहुत ज्यादा जोर था। कंजर्वेटिव अभी भी बहुत स्ट्रांग है प्रेरीज के अंदर, ऑन्टारियो लिबरल्स जो है उनको 21% जो पॉइंट एडवांटेज है वो है इनको, सॉरी लिबरल्स को ऑन्टेरियो के अंदर जो है 21 पॉइंट एडवांटेज है, 50% पे ये स्टैंड करते हैं और कंजर्वेटिव 39% पे है, एनडीपी 8%, क्यूबेक के अंदर भी लिबरल्स बहुत आगे चल रहे हैं, 45% का सपोर्ट है, कंजर्वेटिव को 19%, ब्लॉक के बैक नंबर 2 पे है उसको 28% सपोर्ट है, प्रेरीज के अंदर कंजर्वेटिव के पास 63% सपोर्ट है, लिबरल्स के पास 25%, बीसी के अंदर अब जो इनका लीड था कंजर्वेटिव का वो उन्होंने लूज कर दिया है, अब ये स्टैंड करते हैं 34% पे, लिबरल्स 45% पे, लिबरल्स जो हैं वो एटलांटिक कनाडा में भी जो है वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, 64% उनको सपोर्ट है, कंजर्वेटिव 29%, एनडीबी 6%, और अभी भी जो प्रेफर्ड पीएम का कैंडिडेट है वो कर्नी है और 16 पॉइंट्स का परसेंटेज पॉइंट्स का इनको एडवांटेज है, सो 49% लोग इनको पसंद कर रहे हैं एज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, और पीए पॉलियाव के लिए सिर्फ 33% सपोर्ट है एज प्रीमियर। डकफोर्ड साहब जो है उसने जी आज जितने भी प्रीमियर्स हैं उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग वो कहते हैं कि हमको करने का जरूरत है ताकि हम प्रोविंसेस में से ये जो ट्रेड बैरियर्स और गुड्स एंड सर्विसेज और जो हमारे वर्कर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम बिल्कुल खत्म करें, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन अ सेंस के एक प्रोविंस का बंदा दूसरे प्रोविंस में जाके काम करे ताकि हमारा इकोनॉमी अच्छा होए, क्योंकि यूएस के जो टैरिफ्स लग गए उसकी वजह से हजारे प्रोविंसेज और टेरिटोरीज जो है वो सफर करेंगे। आज उन्होंने टेबल किया है लेजिस्लेशन और उसमें उन्होंने कहा जी कि इंटर प्रोविंशियल ट्रेड हमको चलाने का जरूरत है, और आज उन्होंने एमओयूज जो है वो साइन किए हैं नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रांसविक के साथ, और उन्होंने कहा जी कि हम ये सारे गुड्स और सर्विसेज और ये जो रजिस्टर्ड वर्कर है ये एक प्रोविंस में वो दूसरे में भी काम कर सकेगा और सारे ये चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। डकफोर्ड ने कहा कि कोई भी एक सिंगल प्रोविंस जो है ये ट्रेड बैरियर्स को नहीं रोक सकता है, तो इसलिए ऑल 13 प्रोविंसेज एंड टेरिटोरीज को मिलकर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि हम एक स्ट्रांग यूनाइटेड कनाडा बना सके। नोवा स्कोशिया के प्रीमियर टिम हाउस्टन जो है उन्होंने भी बोला कि गवर्नमेंट जो है उसकी गवर्नमेंट जो है वैसे नोवा स्कोशिया में ऑलरेडी ये लेजिस्लेशन पास कर चुकी है कि नो प्रोविंशियल ये जो बैरियर्स और ट्रेड है ये इसके ऊपर कुछ वो रोक नहीं होना चाहिए है, और उन्होंने कहा जी कि अब हमको ये चेंज जो है इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। अगर ये बिल जो है ऑन्टेरियो में पास हो जाता है तो ऑन्टेरियो जो है वो पहली गवर्नमेंट बनेगी जो कि अनकंडीशनली रिमूव कर रही है ऑल एक्सेप्शंस टू इंटर प्रोविंशियल फ्री ट्रेड इसको, तो ये बहुत ही मेजर जो है ये चेंज यहां पे आएगी। चाइना जो है जी वो अब 245% टैरिफ्स जो है यूएस के जो इम्पोर्ट कर रहा है चीजें उसके ऊपर अब ये फेस करेंगे, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि आपने रिटेलिएटरी एक्शन हमारे साथ लिया है व्हाइट हाउस ने आज का, इसके ऊपर आज जो है चाइनीज जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत सारा रिएक्शन शो किया है। टॉप चाइनीज ऑफिशियल्स जो उन्होंने कहा जी कि ये जो यूएस का टैरिफ्स है ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है और लेकिन इनकी भी इकोनॉमी के ऊपर ये असर डालेगा और दुनिया की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा खराब करेगा, ये जो फोरकास्ट आया है उसके ऊपर इन्होंने कहा है जी कि हम तो सफर नहीं करेंगे चाइना, क्योंकि जाहिर है ये तो दूसरी मार्केट्स ढूंढ लेंगे और चाइनीज जो चीजें हैं वो हम समझते हैं जैसे कि बहुत चीप है नहीं बहुत अब अच्छी क्वालिटी की वो लोग चीजें बनाते हैं। तो आज उन्होंने अपने वो जो है सारे नंबर्स दिए, उन्होंने कहा जी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो हम कह सोच रहे थे कि शायद 5.23 पे रहेगी, उसने बीट किया है हमारे एक्सपेक्टेशंस को। फर्स्ट क्वार्टर में 5.4% रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा क्लाइम कर गया है 6.5% पे, रिटेल सेल्स हमारा क्लाइम कर गया है 4.6% पे, और ये जो ग्लोबल जो ये कॉम्प्लेक्स मैटर्स है ये इनको और ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका बुरा असर आएगा। इनकी जो मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है लियान जियान, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने आज बड़ी धमकी अमरीका को दी, उन्होंने कहा स्टॉप ब्लैकमेलिंग अस, कि कभी बोल रहे हैं कि जी हमको अब हमारे पे लगाएंगे टैरिफ्स, कभी नहीं लगाएंगे, और तुम क्यों लगा रहे हो और तुम क्यों। उन्होंने कहा हमको ब्लैकमेल करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको हमसे बात करना है तो इक्वालिटी रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट के लेवल पे हमसे बात करो। और ट्रंप ने साहब ने क्योंकि ये इससे पहले कहा था कि ये तो पहला स्टेप इनको लेना पड़ेगा क्योंकि द बॉल्स इन देयर कोर्ट, तो उनको हमारे साथ दोस्ती की बात जो है वो करनी पड़ेगी। और ये उन्होंने किस लिए किया है कि आज चाइना ने जो 10 बोइंग 737 मैक्स जेट्स का डील था विच वॉज ओवर $1 बिलियन वो आज कैंसिल कर दिया है चाइना ने। इसके अलावा जो इन्होंने WTO में अपना एक एम्बेसडर भी लगाया है, और WTO ने आज वार्न किया है कि ये जो टैरिफ्स है ये अगर ऐसे ही चलते रहे तो वर्ल्ड ट्रेड जो है वो कम हो जाएगी 1.5% से, तो ये अब खतरे की काफी घंटी है। बहरहाल चाइना ने आज बहुत क्लियरली कहा है कि हमको ब्लैकमेल मत करो। बाइडेन साहब जो है जी उसने आज अपना पहला स्पीच दिया है कोई 30 मिनट्स का, बहुत अरसे के बाद जब से ये जो है वो व्हाइट हाउस से गए हैं, और आज ये बात कर रहे थे डिसेबिलिटी एडवोकेट्स के साथ इन शिकागो में, और उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब के ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कट्स किए हैं फेडरल वर्कफोर्स को, और ये जिसको कि स्पीयर हेड कर रहे हैं एलॉन मस्क का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज जिसको बोल रहे हैं, उनके ये वर्ड्स हैं कि दे आर कॉजिंग ब्रेथ टेकिंग लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। बाइडेन साहब ने ऐसा बोला, और उन्होंने कहा जी कि अभी इनको आए हुए फ्यूअर देन 100 डेज हुए हैं और ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है, एंड हैव टेकन हैचेट टू सोशल सिक्योरिटी पुशिंग 7,000 एम्प्लॉइज आउट ऑफ द डोर, क्योंकि 7,000 जो फेडरल एम्प्लॉइज हैं उनके पास अभी जॉब नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। ट्रंप साहब का जो ये इन्होंने जो है बाइडेन साहब की ये जो भी इन्होंने बातें की, तो ये ट्रंप साहब ने इसको आज हाईलाइट किया है, इनके बहुत सारे जो है स्पीच के क्लिप्स ले लेके डाले हैं, और बोला जी ये भी गलत बोल रहे हैं, ये भी गलत बोल रहे हैं, ये भी गलत बोल रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने भी आज रिस्पॉन्ड किया है बाइडेन साहब के क्लेम्स को, और उन्होंने कहा जी कि ये एजेंसी जो रिफॉर्म्स लाने का कोशिश कर रहा है उसके ऊपर सारा झूठ बोला है बाइडेन साहब ने, आज उन्होंने एक्स के ऊपर बोला, और बाइडेन साहब ने जो था वो कहा कि दे आर शूटिंग फर्स्ट एंड एमिंग लेटर, यानी कि वो पहले चीजें खराब कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब इसको ठीक कैसा करना है, तो ऐसा करके तो उन्होंने कहा जी कि ये सब कुछ रैक कर देना चाहते हैं एंड दे कैन रॉब इट, लेकिन व्हाई व्हाट फॉर, तो वो कहते हैं जी कि ये क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं, टू गिव टैक्स कट्स टू द बिलियनियर्स एंड बिग कॉर्पोरेशंस, ऐसे एलिगेशन लगाए बाइडेन साहब ने। लेकिन जो कुछ डेमोक्रेट्स थे उन्होंने कहा कि अभी आपका कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स के साथ, आप साइड पे बैठो ना, आप क्यों पॉलिटिक्स में री एंटर होने का कोशिश कर रहे हो, तो ये उनके अपने डेमोक्रेट्स की तरफ से भी आज बाइडेन साहब पे थोड़ा इतराज आया। इरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अराकची, उन्होंने आज मीडिया के साथ बात किया आफ्टर कैबिनेट मीटिंग के, जो यूएस उनको धमका रहा है कि तुम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म करो एंड दिस इज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर टॉक्स, उन्होंने कहा कि नहीं न्यूक्लियर टॉक्स सिर्फ न्यूक्लियर टॉक्स हैं, ये चीज जो है ये नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि जो यूएस स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, उन्होंने कहा कि ये तुम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम बिल्कुल हॉल्ट कर दो। तो उन्होंने कहा जी कि हम रेडी है, ईरान रेडी है आपके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, और आपके जितने कंसर्न्स हैं उनका जवाब देने को तैयार है, और जैसे कि हमारी बातचीत ओमान में हुई थी और अभी सोचा सैटरडे को, तो सोचा जा रहा था कि अभी सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स भी ओमान में होएगा, लेकिन हमने आपको कल ही बताया था कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं अब यहां पे इटली में रोम में आप करें, हालांकि ईरान ने कहा था हम जिनीवा में, तो अभी सारी रिपोर्ट आ गई है कि इनका जो है अब सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग जो होएगा सैटरडे को वो रोम में होएगा। इटालियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने भी कंफर्म किया कि इनके टॉक्स वहां पे हो रहे हैं। विटकॉफ ने ईरान को कहा है कि आप एलिमिनेट करें अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को एज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर डील एंड यू रिटर्न टू 3.67 एनरिचमेंट सीलिंग सेट बाय 2015 रिकॉर्ड बिटवीन अकॉर्ड बिटवीन ईरान एंड मेजर पावर्स, जिसमें से कि आपको पता ही है कि यूएस निकल गया था क्योंकि ट्रंप साहब जो थे वो नहीं जाना चाहते थे इस के साथ, ही डिडंट वांट टू गो अहेड विद इट, तो उन्होंने कहा जी कि अभी ये जो है ऐसा नहीं चल सकेगा। इंग्लैंड के अंदर बहुत ही बहुत ही बहुत ही अफसोस का वाकया हुआ है। एंड ये दीज आर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं और मुसलमानों को तो फौरन एकदम से वो ब्लेम लगा देते हैं ना कि ये तो मुसलमान सारे टेररिस्ट हैं ना। तो अभी यूके की पुलिस जो है उसने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है क्योंकि, और उसको कहा जा रहा है इस्लामोफोबिक हेट क्राइम, क्योंकि क्या हुआ है वहां पे कारपेंडर्स जो पार्क का लॉन सिमेट्री है इन वाटफोर्ड, वहां पे 85 ग्रेव्स जो ज्यादातर बच्चों के थी और छोटे किड्स की थी उनको वेंडलाइज किया और डेसिक्रेट किया इन द मुस्लिम सेक्शन ऑफ दैट सिमेट्री। हार्टफोर्डशायर की जो पुलिस है उसने कहा जी कि ये बिल्कुल क्रिमिनल डैमेज है और हम बिल्कुल जो ग्रीविंग फैमिलीज हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि एक ग्रीविंग फैमिली जब यहां पे अपने बच्चे का कुछ अफसोस करने के लिए आई थी तो उन्होंने उनको देख के बड़ा शॉक हुआ कि पूरी वो जो एपिटैप्स थे वो भी गिरे हुए थे और बहुत मतलब बेहरमती हुआ हुआ था वहां पे उसका कब्रों का वहां पे। तो वो कहते हैं जी हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और हमने अपने पेट्रोल्स जो हैं एक्स्ट्रा पेट्रोल्स जो है वो यहां पे एरिया के लिए बढ़ा दिए हैं और हम पुलिस जो है अभी अपील कर रही है विटनेसेस को कि प्लीज आप सामने आओ और हमको बताओ कि ये सब किसने किया है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूं कि अगर ये तो मुसलमान होएगा, वैसे तो कोई कर नहीं सकता ऐसे मुसलमान, लेकिन होएगा तो उसको बोलेंगे ये टेररिस्ट है, और अगर कोई गोरा होएगा तो उसको बोलेंगे जी ये तो इसको मेंटल हेल्थ इशू है, तो ऐसा करके कुछ करेंगे। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग जी, वो अब अपना जो इनका साउथ ईस्ट एशिया का टूर है उसमें आज ये मलेशिया पहुंचे हुए हैं और आज ये कैपिटल कुआलालंपुर में पहुंचे अपने फर्स्ट विजिट पे। इन्होंने आखिरी विजिट 2013 में किया था और ये वियतनाम से आ रहे थे जहां पे जो कि इनका पहला स्टॉप था, और आज बहुत ही हाई लेवल इनकी मीटिंग्स हुई हैं वहां पे। वो कहते हैं कि जी मलेशिया और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, और जो अपने इंटरेस्ट है उनको बढ़ाने के लिए ये थ्री कंट्री टूर जो है इसमें जो मेन मैसेज है अकॉर्डिंग टू बीजिंग कि ये बीजिंग की तरफ सारी दुनिया देख सकती है, हम ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं अमिड यूएस टैरिफ्स ऑन द वर्ल्ड। और इसके अलावा वो ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो बहुत ही अग्रेसिव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है चल रही है उसमें जो स्पेशली जो 10 मेंबर आसियान ब्लॉक है वो चाइना की तरफ देख सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अभी वो कंट्रीज अनहैप्पी है जैसे कि उसको ट्रीट किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स जो चाइना में हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ही, और मलेशिया में खासतौर पर कहते हैं कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है, और चाइना जो है क्योंकि हमारा बहुत ही रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर है मोर देन यूएस, ये सेंटिमेंट है जो कि वहां के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं मलेशिया के। और वो कहते हैं जी कि हमारा कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा चाइना के साथ डील करने का। वैसे भी अंडर प्राइम मिनिस्टर अनवर मलेशिया जो है वो इट इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना, एंड लोग कह रहे हैं कि विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि एक तो चाइना एरिया के अंदर ही है और फिर रिलायबल है और कभी कुछ हेडेक्स देता नहीं है और ये सारे ड्रामे टैरिफ वैरिफ और कुछ करता नहीं है, तो इट इज बेटर। और यही होएगा, आप देखेंगे कि हौले हौले चाइना का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ेगा, ये इसको चाइना के इन्फ्लुएंस को खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, ये होएगा नहीं, तो ये जो है उनको वो और उनके लिए बल्कि मार्केट्स खुल जाएंगे। स्पॉटिफाई जो है जी आपको पता ही है लाखों दुनिया में लोग जो है इसको म्यूजिक के लिए यूज करते हैं, उनको आज फेस उन्होंने किया वाइड स्प्रेड टेक्निकल इश्यूज और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो स्पॉटिफाई के थे उनको प्रॉब्लम आ रहा था, ना तो वो पॉपुलर म्यूजिक सुन सकते थे, ना उसका ऑडियो स्ट्रीमर चल रहा था, ना तो ऐप डाउनलोड हो रहा था, ना वेबसाइट चल रहा था, ना तो वो गाने प्ले कर सक रहे थे। तो एटलीस्ट 48,000 आउटरेज जो है वो रिपोर्ट किया गया था। स्पॉटिफाई ने अपने एक्स के ऊपर लिखा कि यस दे आर अवेयर ऑफ द इश्यू और वो चेक कर रहे हैं, और इनका जो सपोर्ट अकाउंट है स्पॉटिफाई केयर्स उसने कहा कि राइट टीम जो है काम कर रही है और फिक्स कर रही है प्रॉब्लम को। उन्होंने कुछ कॉज तो नहीं बताया है आउटरेज का, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रहे थे कि शायद कुछ सिक्योरिटी हैक आया है उसको उन्होंने बिल्कुल जो है वो नल एंड वॉइड करार दिया और उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 675 मिलियन यूजर्स है दुनिया में स्पॉटिफाई के, 263 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके इन ओवर 180 मार्केट्स। तो ऐसा है। इमरान खान साहब जो हैं जी वो काफी डिसप्लीज हैं अपने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ, के जो वो पब्लिक में पीटीआई लीडर्स को जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग उनके जाके डियाला जेल में मिल रहे हैं उनको राजा साहब ने कुछ दिन पहले कहा था जो मंजूर नजर यानी कि जो फेवरेट्स है वो जाके मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि इनकी अपनी बहन अलीमा खान को मिलने का इजाजत नहीं दिया गया। एज अ रिजल्ट दूसरी बहनें भी नहीं गईं और अलाउ किया था बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर को इनसे मिलने के लिए। उसके ऊपर आज काफी स्कूल किया है इमरान खान ने इनको। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये स्कूल क्लासरूम की तरह रन नहीं होती हैं, तो आप ये इंटरनल ब्लेम गेम मत करो और ये ऐसे कंट्रोवर्सीज मत चलाओ और ये कोई भी फेवरेट्स नहीं है। हर किसी को जिसको एक्सेस मिलता है वो मिल सकता है पार्टी के अंदर, ऐसा कोई भी कुछ भी ये इमरान खान ने नहीं कहा, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा डायरेक्टिव नहीं है कि कोई खास स्पेसिफिक बंदा ही इमरान खान को जाके मिल सकता है। तो उसी की वो बात कर रहे थे कि आप इस तरह के मैसेजेस जो है वो मत दो। और इससे पहले जब इन्होंने गौहर अली खान के ऊपर भी एतराज किया तो गौहर अली खान ने कहा कि हम आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहते हैं कि मार्च 25 को आपको जाने दिया था इमरान खान से मिलने के लिए राजा साहब, और उसकी अपनी खुद की बहनों को भी नहीं मिलने दिया था खान से। तो इस तरह से आप ब्लेम मत करो और ये वैसे भी जो है अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है ऐसा करने के लिए। इसके साथ साथ जो है वो इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें खान ने गौहर को एडवाइस किया था कि जब उनको बताया गया कि एक अमेरिका बेस्ड जो वीलॉगर है वो आपके जो ऐसे कुछ शायद उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स इधर पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसके लिए उनको क्या हमको हटाना चाहिए, तो खान साहब ने कहा था अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है उनको हटाने के लिए, लेकिन उनको अपने कमेटी के मीटिंग्स में अब इन्वाइट मत करो। अब वो कौन सा बंदा है जिसको के पता है कि मुझे रिमूव कर दिया गया है, अब बहुत सारे क्योंकि लोग बैठे हैं, क्योंकि शहजाद अकबर भी है और जुल्फी बुखारी भी है बाहर और जो है ये जो शहबाज गिल है वो भी है, तो ये सारे ही अपने वीलॉग्स कर रहे हैं, नॉट रियली जुल्फी बुखारी मगर वो दोनों, तो इसके अलावा मुईद पीरजादा भी हैं, तो अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो किसके बारे में उन्होंने बात किया है, या कि फिर कुछ जो जर्नलिस्ट है जैसे कि इमरान रियाज और भी कुछ, तो क्या उन ये, मगर वो तो इनकी पार्टी का हिस्सा नहीं थे सॉरी, तो अब इनमें से किसके बारे में उन्होंने बात किया कुछ मालूम नहीं है, तो अभी जब डिटेल्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे। JUIF के जो चीफ है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है जी बिल्कुल, जो केपी गवर्नमेंट का हमने आपको कल बताया था ना कि उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स का एक बिल वो लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और ये सेंटर जो है इनको प्रॉम्प्ट कर रहा है कि ये सारे का सारा जो प्रोविंशियल रिसोर्सेज है इसके ऊपर वो कब्जा कर ले और जो प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है उसको ये कट करना चाहते हैं, तो हम इसको नहीं मानेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पिशावर के अंदर, उन्होंने कहा जी कि सिर्फ सेंटर ही नहीं इंटरनेशनल पावर्स भी ये सब चीज के ऊपर हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और कोई भी बिल अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए केपी असेंबली में जो कि वायलेशन दिखाएगा 18th अमेंडमेंट का। उन्होंने आज जो रूलर्स हैं उनको भी बहुत वार्न किया, उन्होंने कहा कि अगर आपने ये बात नहीं माना तो हम सारे जो है स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट करेंगे आके, क्योंकि आप ये जो है सेंसिबल डिसीजन नहीं ले रहे हो। और उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त तक सारों के साथ मिलके आप नहीं बैठेंगे और ये पूरी एक प्रॉपर जो है वो डिवाइस नहीं करेंगे जो स्ट्रेटजी है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने अडॉप्ट किया है एक अल्टरनेटिव वे, उन्होंने कहा कि वो अपने डिजायर्ड गोल्स ले ले, और उन्होंने ऐसे लेजिस्लेशंस बनाए हैं जिसमें कि जुडिशरी का भी रोल उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने सेंटर को कहा कि आपने अगर बिजनेस करना है केपी के साथ तो उसका रिस्पेक्ट करें और उसकी ऑटोनॉमी भी जो है प्रोविंस की उसकी भी रिस्पेक्ट करें, और हम बिल्कुल ना आपको ना ग्लोबल पावर्स को इजाजत देंगे कि वो प्रोविंशियल रिसोर्सेज के ऊपर ऐसा कब्जा करें। यह बात उन्होंने उस वक्त की है जिस वक्त के इमरान खान ने भी कहा है कि कोई भी लेजिस्लेशन माइंस और मिनरल्स का केपी असेंबली में मेरे अप्रूवल के बगैर जो है बिल्कुल पास नहीं किया जाएगा, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को कहा है कि इसके ऊपर मेरे से बात करो और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी बात करो, सबकी सहमति के साथ ये होगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो है उनसे पूछा गया कि ये जो 1.5 मिलियन अनरजिस्टर्ड रेफ्यूजीज अफगान रेफ्यूजीज इनके बारे में आपका क्या ख्याल है जिनको वापस भेजा जा रहा है, उन्होंने कहा जी कि ये तो जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है केपी में उसके लिए भी, और ये जो इनका मसला है उसके लिए अफगान गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, और 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज जो अनरजिस्टर्ड है उनको रजिस्टर करो आप, तो ऐसा कुछ उन्होंने सुझाव दिया। BNPM ने आज अनाउंस किया है कि ये जो 20 डे का लॉन्ग सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा था लाख पास पे मस्तंग में उसको वो ये खत्म कर रहे हैं। ये उन्होंने उस वक्त शुरू किया था जब जो बलूच राइट्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट के हुक्म के ऊपर। पार्टी लीडर जो है अख्तर मैंगल, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस आ गया था तो इसलिए हम ये खत्म कर रहे हैं और अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के रैलीज निकालेंगे बलूचिस्तान के अंदर। ये तीन वीक से जो ये वो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने डिमांड किया था कि डॉक्टर मारंग बलोच जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है ऑफ बलोच यकजहती कमेटी, उसको और दूसरे फीमेल जो एक्टिविस्ट जो डिटेन किए हैं उनको निकालें। सिंध पुलिस ने इसके अलावा जो वीवाईसी की जो लीडर थी समी दीन बलोच उनको भी किया था, बाद में उनको डिटेन करने के बाद उनको रिलीज भी कर दिया था। लेकिन ये लोग जो है मोर्चा निकाले हुए थे, जिसकी वजह से की हाईवेज जो है जो कनेक्ट करते हैं क्वेटा और कराची को और ताफ्तान को, वो सारे क्लोज पड़े हुए थे। इसमें बहुत सारा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आया था, बहुत सारे एसेंशियल गुड्स नहीं आ रहे थे और जो पब्लिक है उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रही थी और बिजनेस कम्युनिटी में भी। प्रेजिडेंट ऑफ क्वेटा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोहम्मद एयूब मरियानी ने कहा कि ये जो ब्लॉकेड इन्होंने किया हुआ है इसमें मिलियंस ऑफ रूपीज का फाइनेंशियल लॉस जो है वो आ रहा है। इसके अलावा 1200 ट्रक्स एंड कंटेनर्स इंक्लूडिंग 847 टैंकर्स जो कि एलपीजी कैरी करते हैं और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईरान, वो भी पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर खड़े रहे थे। तो कुछ भी ऐसा जो है चल नहीं रहा था। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज क्रेडिट किया है पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप को और बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा जी कि बीजिंग का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो इस्लामाबाद आईएमएफ का बेल आउट पैकेज जो है $7 बिलियन का वो नहीं ले सकते थे और उनकी असिस्टेंस के बगैर ये मुश्किल था। उन्होंने एक सेरेमनी आज हो रही थी इन कनेक्शन विद पीएम इनिशिएटिव फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 1000 एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स इन चाइना, तो उसके ऊपर इन्होंने ये बात किया। उन्होंने कहा जी कि लास्ट मंथ जो हमारा डील हुआ था इस्लामाबाद का आईएमएफ के साथ ऑन फर्स्ट रिव्यू ऑफ ऑन गोइंग 37 मंथ बेल आउट प्लान वर्थ 7 बिलियन, उसमें चाइना ने बहुत हेल्प किया है। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने अभी सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ये तमाम के तमाम पिटीशंस डिसमिस करे जिसमें कि चैलेंज किया गया है रीसेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स को इंक्लूडिंग दोज कंसर्निंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एक 7 पेज का रिस्पांस इन्होंने दिया है ऑन कंटेंशंस ऑफ पिटीशनर्स के उनको जो है डिनाइड ऑन ऑल काउंट्स, उन्होंने ऐसा बोला है। उन्होंने एक सबमिट किया था एक ये जो सारा अपना जो रिप्लाई था जो रिस्पांस था और उन्होंने ये सारा प्रोसेस जो है इनिशिएट किया था अंडर आर्टिकल 200 फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम पंजाब सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स, और उसने कहा जी कि ये सारे का सारा जो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से शो करता है और इसके अंदर कोई जुडिशरी की हमने जो इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन नहीं किया है। 5-member बेंच हेडेड बाय जस्टिस मोहम्मद अली मजाहिर विद जस्टिसेज अमीन खान अफगान शाहिद बिलाल हसन सलाउद्दीन पनहार शकील अहमद जो थे उन्होंने ये पिटीशन जो थी फाइल किया था बाय 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस और कराची बार एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने टेकअप किया था ये पिटीशन जो कि फाइल किया था 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस कराची बार एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अमंग अदर्स। फरवरी में इसी साल में 5 judges जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उनको मूव किया था सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट जस्टिस सरफराज डोगर्स अपॉइंटमेंट और जो अगेंस्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम 3 हाई कोर्ट्स टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये बहुत अरसे से ये जुडिशरी के अंदर ही लड़ाई चल रहा था, कुछ लोग कह रहे थे आपने क्यों इनको किया, तो आज इसका गवर्नमेंट ने यानी सिंपल वर्ड्स में जवाब दिया कि जी हमने ये सारा ट्रांसपेरेंसी से किया और इसमें कोई रूल्स जो है ना तो तोड़े हैं ना तो जुडिशरी को हमने अंडरमाइन किया है। कमिश्नर कराची जो है सैयद हसन नकवी उन्होंने कहा जी कि अभी 2 months का बैन रहेगा ऑन अनऑथोराइज 1+2 एंड 1+4 मोटर कैब रिक्शॉज ऑन 11 major रोड्स इन कराची। ये डिसीजन उन्होंने लिया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ DIG ट्रैफिक जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ये इफेक्टिव रहेगा फ्रॉम April 15 से June 14 तक क्योंकि बेताजा अनऑथोराइज रिक्शॉज जो हैं वो विदाउट ऑफिशियल परमिट्स जो है इन रोड्स के ऊपर चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक का कंजेशन जो है वो आ गया है, तो ये ट्रैफिक को रोक रहे हैं और सेफ्टी रिस्क पैदा कर दिया है। तो इसलिए जितने भी मेजर सिटी के रोड्स हैं उनको हमको खत्म करना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं अमर
जी? आपकी पाकिस्तान न्यूज खत्म हो गई, इसका यह है भी हमारे पास न्यूज, हम एक ब्रेक लेंगे।
नहीं अभी एक है हमारे,
आप सुना दें।
बहुत ही ज्यादा हैवी हेल स्टॉर्म और हुआ है इस्लामाबाद और केपी के इलाकों में, और वहां पे बहुत मेजर तरीके से जो गाड़ियां हैं और विंड स्क्रीन्स और सोलर पैनल्स जो हैं वो लोगों के बहुत ज्यादा उसका आज नुकसान रहा। ये बहुत ही हैवी फ्लैश जो हैवी रेन्स की वजह से बहुत ही हैवी फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो भी आगे है। इस्लामाबाद के अंदर तो जो स्टॉर्म था वो तकरीबन 35 मिनट्स तक रहा और उसने काफी गाड़ियों के विंड स्क्रीन्स तोड़े और जो ट्रीज थे उनको डैमेज किया और ट्रीज जो थे वो अपरूट हुए थे और उसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो में काफी प्रॉब्लम आया था और बहुत सारा जो पावर आउटरेज है वो भी चल रहा है। लेकिन अभी कोशिश किया जा रहा है कि सारा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको रिस्टोर किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी ये बोल रहे हैं कि हम रोड्स को भी क्लियर कर रहे हैं और हम ये जो ड्रेनेज का काम है वो भी यहां पे कर रहे हैं। हाँ जी
चलें जी, अब खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी है, ये एक छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद इंडिया की खबरें, इंटरटेनमेंट की खबरें और जो हमारी स्पोर्ट्स की खबरें
हाँ।
वो इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। 416-6201-778 हमारा नंबर है।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या फिर होम लोन,
सोचो ना बस, बिल्कुल भी होने मिलाओ फोन।
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काकदा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक। 416-502-8000
लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदार स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल।
30 इयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन।
इंडोर एंड आउटडोर गोल्फ कोर्स फैसिलिटीज, चांदनी बैंक्वेट हॉल। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल टुडे एट 905-458-8888, 905-458-8888 और विजिट chandnivictoria.ca।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साज़ो आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और आपका हमारा साथ तकरीबन 8 बजे तक रहेगा। बिल्कुल जी, खबरों का पार्ट 2 जो है वो शाज़िया मलिक साहब अभी आपके लिए सुनाएंगे, जिसमें हिंदुस्तान की खबरें, इंटरटेनमेंट की खबरें और फिर स्पोर्ट्स की खबरें लेंगे। आप हमें सुन रहे हैं 6478724900 डायल करके, इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com, यहां भी आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं। तमाम स्पॉन्सर्स के नंबर हमारी वेबसाइट eawaz.com पर जो है मिल गए। अब तक जो खबरें आपके लिए पेश आई गई वो हमारे स्पॉन्सर्स के बगैर ये नामुमकिन है। तो अगर आपको मैं ईस्ट एंड पर भेजूं खाना पीने के लिए, तो जनाब शाहीन टिक्का एंड कबाब आप जरूर जाइए, बहुत ही लजीज और जबरदस्त खाने आपको वहां पर मिलेंगे शाहीन टिक्का एंड कबाब पर। और अगर आप यहां वेस्ट एंड में हैं, मिसिसागा एंड ओकुल के एंड पर, तो जनाब वन एंड ओनली पॉन्टियाजो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेज, यहां फैसल चट्टा साहब होते हैं। और अगर आपको बफे एंजॉय करना है तो जनाब आप एक बार जरूर फैसल चट्टा के पास जाइए, विलेज स्टेज। आप गूगल कर सकते हैं विलेज स्टेज, वेरी इजी। मिसिसागा में इनकी लोकेशन है 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा, और इनकी ओकविल लोकेशन है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल। तो अब हम चलते हैं खबरों के बकिया हिस्से।
तो हम जनाब शुरू करते हैं अब इंडिया की खबरों से। आज बहुत ज्यादा कश्मीर के अंदर जो है माहौल गर्म रहा, वहां पे जो इंडियन ऑक्यूपायर जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे, उसकी वजह यह है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, उनकी जो है उन्होंने आज बहुत ज्यादा एतराज किया है फॉर्मर रॉ के जो चीफ हैं एएस दौलत के ऊपर, क्योंकि उनकी आने वाली है एक बुक। जिशान उनकी दिखाएं, फारूक अब्दुल्ला की और दौलत साहब की पिक्चर दिखाएं। तो उन्होंने कहा है जी कि ये बहुत ज्यादा गलत किस्म की इन्होंने किताब लिखी है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो तो कभी चाहते थे कि आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट किया जाए। अब ये बुक जो है अभी तक इनकी आई नहीं है, ये आने वाली है, और इस बुक जो है इसका नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, और ये अप्रैल 18 को आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही जो कुछ कॉपीज अवेलेबल हैं तो उसका जो है ये जिक्र किया जा रहा था। उसमें दौलत साहब के बारे में इन्होंने कहा जी कि ये दौलत साहब बहुत ही चीप स्टंट कर रहे हैं अपना बुक को बेचने के लिए, वरना ऐसा तो कुछ इसका ये है नहीं, ये इनका अपना इमेजिनेशन है जिस पे कि ये इन्होंने सारे का सारा बुक लिखा है। और ये हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस एब्रोगेशन के ऊपर क्या स्टैंड था वो सारी दुनिया को पता है। उन्होंने कहा जी कि हमने हमेशा जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको हमने डिफेंड किया है, और जो तमाम जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे जम्मू एंड कश्मीर के, हम तो उनको जमा करते रहे हैं अंडर अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, ताकि इसके खिलाफ लड़ा जाए, और ये कोलिशन था ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू डू द सेम। और ये जो इन्होंने वो कहते हैं जी कि ये जो इन्होंने चीजें अडॉप्ट किए हैं और ये जो इन्होंने चीजें अपने मेमोयर्स में लिखे हैं इसका तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। और उन्होंने कहा जी कि अगर आपको आप याद करेंगे कि 2018 में जब इसको खत्म किया था तो उस वक्त तो कोई असेंबली ही नहीं था, और इसको खत्म करने के लिए असेंबली का डिसॉल्व होना जरूरी था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर असेंबली का सेशन होता भी तो भी उसमें अगर ये बात लाई जाती तो मैं इसके खिलाफ बोलता, यानी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के मैं खिलाफ बोलता। उन्होंने कहा जी कि ये बुक जो है इट इज फुल ऑफ इनएक्यूरेसीज, और मैंने तो जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कोई इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, और मैंने तो उसको छोड़ दिया। और ये जो इन्होंने कहा है कि जी ये हर चीज में फारूक अब्दुल्ला मेरा एडवाइस लेते थे, तो मुझे इन्होंने मुझको अंडर एस्टिमेट करने का कोशिश किया है। आई एम अ मैन ऑफ माई ओन माइंड और मैं किसी का पपेट नहीं हूं। और इनका यह भी जो क्लेम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के पास बहुत जाना चाहती थी, ये भी एब्सोल्यूट लाए है। और जो है मैं कैसे एक पार्टी के पास जा सकता हूं जो कि मेरी ही पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक फिर से आने वाली है। आपको पता ही है कि पहले भी जो स्पाई क्रॉनिकल्स आए थे इनके, जो उन्होंने पाकिस्तान के भी जो आईएसआई के चीफ थे जनरल दुरानी के साथ मिलकर रखा था, वो बुक भी बहुत बिकी थी। तो अब ये जो दूसरी है इसका भी अब लोगों को बड़ा इंतजार है। इसके अलावा जी हिन्दुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, वही जो वक्फ का बिल आया है उसकी वजह से, ये जो न्यू लॉ है उसके लिए वो लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और बहुत सारी लड़ाई झगड़े में, हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि कोलकाता में बहुत सारे जो है पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, लोग भी हुए हैं, और गाड़ियां जो हैं बहुत सारे, पुलिस कहती है हमारी गाड़ियां जले हैं और लोग कहते हैं हमारे जले हैं। इस वायलेंस में अभी तक बहुत सारे लोगों के डेथ्स हुए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर है उसकी वो 3 की है। इसके साथ साथ मुर्शिदाबाद का भी हमने आपको बताया था अनरेस्ट चल रहा है। आज क्या हुआ है कि ये एक शॉपिंग मॉल जो है उसको आग लगाया गया है, घरों को अटैक किया गया है और स्टैब किया गया है लोगों को। मुस्लिम ग्रुप्स एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये कह रहे हैं कि ये जो लॉ है ये मोदी जी के जो पॉलिसीज जो है ये एलियनेट करेगी और मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करेगी। मोदी जी की गवर्नमेंट इसको सबको डिनाई कर रही है, वो कह रही है कि नहीं ये प्रो मुस्लिम रिफॉर्म्स हम लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद जो है वो भी कोलकाता से बहुत ज्यादा नाराज है, वो कह रहे हैं कि तुम लोग ये अटैक्स हमारे पे करवा रहे हो, हिंदुओं के ऊपर करवा रहे हो, और हमारे जो प्रॉपर्टीज है वो जो है इसमें अंडर अटैक आ रहे हैं, खासतौर पे वेस्ट बंगाल के अंदर। और उन्होंने कहा जी कि हमारे जो विक्टिम्स है जिसके के ऊपर मुसलमानों ने एलएचडी अटैक किया तो उसका आप हमको कॉम्पनसेशन दो। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बैनर्जी, उन्होंने कहा जी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे वेस्ट बंगाल के अंदर तो हम वक्फ लॉ जो है वो नहीं लगाएंगे। हमने बहुत ही क्लियरली पहले ही बोल दिया कि ये लॉ हमने बनाया नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको लगाएगी जिधर लगाना चाहती है, हम अपने यहां पर वेस्ट बंगाल में नहीं लगाएंगे। इसके साथ साथ सीनियर कांग्रेस के जो लीडर है पी चिदम्बरम, उन्होंने भी कहा है कि अगर कांग्रेस का अलायंस नेक्स्ट इलेक्शन में जीत के आएगा तो हम ये जो अमेंडमेंट लाए हैं वक्फ एक्ट के अंदर इसको हम एनॉल करें, यानी कि अब खत्म करेंगे हम इसको, पहला वाला ही वो जो वक्फ एक्ट है उसी को रहने देंगे। तो ये काफी लड़ाई झगड़ा वहां पे जो है जनाब चल रहा है। दीपिका पाडुकोण जो है जी, उनसे एक इंटरव्यू के बीच में पूछा गया कि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह में से बेटर एक्टर कौन है, तो आप किसको समझती हैं, कि अगर आपको चूज करना पड़े इन दोनों में से तो आप किसको चूज करेगी। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो कंपैरिजन लोग करते हैं ये बिल्कुल गलत है और मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं ऐसा करती हूं। ये तो बिल्कुल वैसी बात है कि कोई मेरे को बोल रहा है कि तुम अपनी माँ को ज्यादा चाहती हो या बाप को ज्यादा चाहती हो। तो रणबीर वहां पर बैठा हुआ था, रणबीर कहने लगा प्लीज मुझे अपना बाप समझो। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि दीपिका भी थोड़ी मुस्कुराई, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टेंटली हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो है फिल्म्स को एक्टर्स को हर वक्त कंपेयर किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये दोनों एक्टर्स ही के डिफरेंट पर्सनालिटीज है और ये डिफरेंट तरह का काम करते हैं दोनों, तो इसलिए हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे भी ये है। करण सिंह त्यागी की ये जो फिल्म अब केसरी चैप्टर 2 आ रही है जालियांवाला बाग के ऊपर, उसका एडवांस बुकिंग जो है वो जारी है। ये मूवीज थिएटर्स में आएगी अप्रैल 18 को। इसके अंदर जो हैं अक्षय कुमार और माधवन और अनन्या पांडे जो हैं वो नजर आएंगे लीड रोल्स में। अभी तक इसके 4,000 टिकट्स बिके हैं और टोटल कलेक्शन जो है 12 लाख की एडवांस बुकिंग में हो गई है। जो फर्स्ट रिव्यूज आए हैं सामने सोशल मीडिया पे, उसमें तो लोग इनको बे इंतहा तीनों की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं।